हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। गुजरात निमानी हाउस, सुबह 8 बजे। वेदांत का कमरा। वेदांत रेडी हो रहा था और साथ ही साथ विहा को बार बार देख रहा था, जो अभी तक उठी नहीं थी। वेदांत पूरी तरह रेडी होकर एक नज़र खुद को देखता है। वेदांत हाथ पर घड़ी बांधते हुए एक नज़र फिर विहा पर डालता है, जो अभी भी तकिए में मुंह छुपाई पड़ी है। वो धीरे से उसके पास आता है और सिर के पास झुककर हल्के से बोलता है, टोमेटो, उठने का इरादा है आज या छुट्टी ले रखी है पूरे मोहल्ले से? विहा करवट लेकर मुंह दूसरी तरफ कर लेती है, फिर चिढ़ते हुए नींद भरी आवाज में बोलती है, आप क्यों हर सुबह मुझे उठाने आ जाते हैं? अलार्म हूँ क्या मैं आपके लिए? वेदांत सीधा खड़ा होकर धीरे से बोलता है, मैं फिकर करूं तो भी प्रॉब्लम है, चलो सोती रहो, वैसे भी 8 बजे कोई जॉगिंग पर नहीं जाता, जो कल बहुत ज्ञान दे रही थी, जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हो। विहा तकिए से मुंह निकालती है और पलट कर जवाब देती है, तो कर लो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल से शादी, मुझे मत उठाओ हर सुबह। वेदांत गुस्से को कंट्रोल करता है और फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। विहा चिढ़ते हुए बोलती है, तो क्या मेरे हाथ से दही शक्कर खा के जाएंगे? वेदांत पलटकर उसे कुछ बोलने वाला था, लेकिन फिर उसकी नज़र बेडशीट पर पड़े ब्लड स्टेन पर जाती है। कुछ पल के लिए उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है, पहले उलझन फिर समझ। वो एक लंबी सांस लेता है, फिर थोड़ा शांत होकर बोलता है, आई थिंक तुम्हें शॉवर ले लेना चाहिए टोमेटो, और शायद बेडशीट भी बदलनी पड़ेगी। विहा ये सुनकर एकदम चौंक जाती है और जल्दी से चादर को खींचती है, फिर वेदांत को देखकर गुस्से में बोलती है, यू गॉट टू बी किडिंग मी, आप ये बात धीरे से नहीं बोल सकते थे? वेदांत कंधे उचकाते हुए बोलता है, क्या दीवार के भी कान होते हैं, किसे सुनाई दे रहा है ये, तुम क्यों खुद को ड्रामा क्वीन बना लेती हो हर बात पर? विहा सिर पकड़ते हुए, पीरियड्स पेन से ज्यादा आपकी बातें परेशान कर रही हैं, वेदांत ने शांत आवाज में कहा, तो मत सुनो, और हाँ, बाथरूम में गीजर है, चाहे तो इस्तेमाल कर लो, वरना फिर सर दर्द का बहाना मत बनाना शाम को, पीरियड्स में ठंड जल्दी लग जाती है, वैसे भी वायरल कोल्ड का टाइम चल रहा है। इतना बोलकर वो मुड़ते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। विहा कुछ पल तक दरवाजे को घूरती है, फिर बड़बड़ाती है, शक्ल तो जैसे ऋतिक रोशन की है, पर बातें तो बिल्कुल हेडमास्टर जैसी। वो चादर लपेटे हुए बाथरूम की ओर जाती है। वहाँ थोड़ी देर बाद शॉवर लेकर जैसे ही कमरे के अंदर आती है, तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखों में शर्म उतर आती है, क्योंकि वेदांत ने बेडशीट चेंज की थी। वह अब उस दाग लगी बेडशीट को लेकर उसी की तरफ आ रहा था। विहा ने इस वक्त एक ब्लैक कलर का सलवार सूट पहना था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। विहा की पलकें शर्म से झुकी हुई थीं। वेदांत उसकी साइड से होकर वॉशरूम की तरफ चला गया और फिर उस बेडशीट को वॉशिंग मशीन के ऊपर रखते हुए बाहर आ गया। उसने जब देखा कि विहा वैसी की वैसी खड़ी है, तो उसने उसके सर पर हल्के से थपथपाते हुए कहा, टोमेटो, कहाँ, टेबल पर कॉफ़ी रखी है, पी लो, ब्रेकफास्ट भी अनाही ने रेडी कर दिया है, तो हमारे जाने के बाद ब्रेकफास्ट भी कर लेना। इतना बोलकर वेदांत कमरे से बाहर चला जाता है। वहीं विहा बस उसे देखती रह जाती है। विहा फिर अपने गीले बालों को झाड़ते हुए मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। वह वेदांत का पल पल बदलता बिहेवियर देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी। विहा ने फिर गहरी सांस छोड़कर अपने बालों को बनाना शुरू किया और फिर वो वेदांत को याद करते हुए धीरे से बड़बड़ाते हुए बोलती है, वे तो विधान जी की गर्लफ्रेंड तो कितनी रखी होंगी, उसको विधान जी की हर महीने मिलती होगी, वो भी स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ, क्योंकि वो तो उनका प्यार है, मैं तो उनके लिए कुछ नहीं लगती हूँ, आज 4th डे है मेरा उनके साथ, उसके बाद भी वो मेरे साथ कितनी नरमी से पेश आ रहे हैं और कितनी केयर भी कर रहे हैं, अब तो मुझे उसकी उस लड़की से जलन हो रही है। इतना बोलकर विहा रोनी सूरत बना लेती है। तो वहीं वेदांत जब हॉल में पहुंचता है, तो राधिका और निवेदिता को गुड मॉर्निंग विश करते हुए एक नज़र ओपन किचन की तरफ डालता है, जिसमें अनाही उन दोनों का टिफिन लगभग पैक कर चुकी थी। उसने उन दोनों टिफिन को एक बैग में डालते हुए किचन से आते हुए कहा, वेदांत जी, आप उठ गए, अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं, मैं भी अपना कोट ले आई हूँ। वेदांत को पता था अनाही को सुबह सुबह इतनी जल्दी प्रैक्टिस करने की आदत नहीं थी, इसलिए अनाही पहले भी ऑफिस में आकर ही अपना लंच करती थी, और वो भी सबसे पहले, जिस वजह से सब उसको भुक्कड़ भी बोलते थे। लेकिन धीरे धीरे सबको समझ आया कि अनाही मॉर्निंग में लेट नाश्ता करती है। वेदांत ने उसकी बात सुनकर बस हमेशा हिलाया और फिर अनाही तेज कदमों से चलती हुई अपने कमरे में चली गई। कमरे में आज रूहान को रेडी होता देखकर अनाही ने धीरे से कहा, क्या आज आप कॉलेज जा रहे हैं? रूहान ने उखड़े हुए अंदाज में कहा, क्यों, आपको मेरे साथ कॉलेज में लेक्चर देने जाना है मैडम जी? अनाही ने अपने होठों को भींचते हुए ना ऐसा हिलाई और फिर धीरे से कहा, नहीं, पर विहा का एडमिशन करवाना है सेकंड ईयर में। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वैसे मेरे पास, तो अगर आप कॉलेज जा रहे थे तो उसे भी ले जाना साथ। पैसे तो वो नखरे कर दिया कॉलेज जाने के नाम से, लेकिन फिर भी अगर आप जा रहे हैं तो मैं उसे अभी पूछ कर आ जाऊंगी। रूहान अपनी शर्ट पर परफ्यूम लगाते हुए धीरे से कहा, नहीं, मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, मुझे कुछ और काम है, बस वही जा रहा हूँ। आपको हो तो ऑफिस छोड़ दूँ। रूहान आंखों में उम्मीद लिया नाही को देख रहा था, जिसकी पलकें झुकी हुई थी और वो अपने होठों को चबाते हुए कुछ सोच रही थी। जैसे ही उसने रूहान का सवाल सुना, वो जल्दी से आंखें उठाकर रूहान की तरफ देखते हुए बोली, नहीं, हम दोनों साथ ही चले जाएंगे। वैसे भी आपका तो टाइम ही वेस्ट होगा उधर जाने में, आपके उधर तो कोई काम होता नहीं है, तो मैं अनाही के साथ चली जाऊंगी। फिर अनाही ने अपना पर्स उठाया और रूहान के बगल में जाते हुए अपने माथे की बिंदी को ठीक करते हुए कहा, वैसे मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, मम्मी जी से पता चला आपको व्हाइट सॉस पास्ता बहुत पसंद है, तो मैंने वही बनाया है, वो जरूर खाकर जाएगा। रूहान अनाही को इतने करीब पाकर कुछ पल के लिए तो फ्रीज हो चुका था। अनाही के शरीर से आई सोंधी महक उसे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन साथ ही साथ अनाही के मुंह से निकले शब्दों में झलकता फिक्र उसे बनावटी लग रही थी, जिससे उसका मुंह बिगड़ा हुआ था। अनाही जैसे ही उससे दूर जाने लगी, रूहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और अनाही एकदम से ढलते हुए मुड़कर कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देखने लगी। कुछ पल की खामोशी के बाद अनाही ने सवाल किया, आपको कुछ और चाहिए था मुझसे? रूहान को खुद नहीं पता चला कि उसने अनाही को क्यों रोक लिया, पर अनाही के गर्दन पर उभरते रोएं उसे साफ नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से उसने अनाही का हाथ छोड़ दिया और फिर अपने होठों पर जीभ घुमाकर आहिस्ता से बोला, मेरी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे घर वाले अभी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो वो भी बना देंगे, आप बस अपना ख्याल रखिए। अनाही को रूहान की ये अजीबोगरीब बात अंदर तक परेशान कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन बनाते हुए कहा, जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि मुझे आपकी फैमिली का हिस्सा बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इतना बोलकर अनाही मुड़ते हुए कमरे से बाहर चली गई और रूहान बस उसे देखता रह गया। बहुत ही अजीब बीवी थी उसकी, ऐसा लगता था जैसे सेंसिटिव थिंकिंग वाला फीचर उसके अंदर है ही नहीं, हर बात का बिल्कुल स्ट्रेट और रूट जवाब देती है।
रूहान ने आंखें छोटी करते हुए सोचा, कॉफी बनाने में तो मौत आ रही थी और अब व्हाइट सॉस पास्ता भी बना दिया जिसमें इतनी मेहनत लगती है। बहुत ही अजीब बर्ताव करती हैं आप मैडम जी, एक पल के लिए लगता है आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और दूसरे पर नहीं, आप बिल्कुल हार्टलेस लगती हैं। आपको किसी की फीलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ये परवाह पता नहीं आप क्यों करती हैं, क्योंकि मेरे पास तो देने के लिए भी कुछ नहीं है जिसके लिए आप मुझे बहलाना फुसलाना चाहती हो।